अभी कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम के बीच विज्ञापन बहुत आते हैं। ये विज्ञापन वाले दर्शकों को खूब परेशान करने में लगे हैं। दर्शक बेचारा विज्ञापन देखता है और फंस जाता है। ऐसा ही फंसाने वाला एक विज्ञापन कोका कोला का आता है। आमिर खान कहते हैं कि जो चाहो हो जाए, कोका कोला एंजॉय। अभी ये विज्ञापन देखकर एक भैया बहुत बुरा फंस गया, बेचारा रो रहा था।
ये आमिर खान के बच्चे ने तो मुझे जो है ससुरा बहुत बुरा फंसा दिया। कसम से आमिर खान मिल गया ना तो ससुरा को पटक पटक के मारूंगा। इतना बुरा फंसाया है, इतना बुरा फंसाया है कि क्या बताऊं। अरे ये तो बच गया, नहीं तो जेल के अंदर होता भैया, जेल के अंदर।
ए भैया का हुआ, कहे रोता का है भाई? ए राम खिलावन बताओ ना, कहे रो रहा, का हुआ?
अरे भैया ये आमिर कनवा बहुत बुरा फंसा दिया रहा हमको। टीवी में कहता रहा जो चाहो हो जाए, कोको कोला पी जाए। अरे भैया यही चक्कर में हम एक नहीं दो दो बाटली पी गया रहूं।
पीने के बाद हम सोचा कि अब हम जो चाहूंगा हो जाएगा।
यही सोच के हम बिना टिकट लिए
लोकल ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठ गया रहूं।
अरे जैसे है बैठा रहूं ससुरा टिटिया आए के पकड़ लिया हमको।
इतना झूठा है आमिर खान। हाँ चाचा झूठा की बात ना करो, ये फिल्म लाइन का जितना लोग है सब झूठा है, सब झूठा है। वो छोकरिया नहीं रही तो खटिया सरकाती रही, का नाम उनका? हाँ करिश्मा कपूर। उहू ससुरी एक नंबर की झूठी है। एक दिन हम टीवी में देखा रहा, कहती रही कि जब देखो सब देखो, जब देखो सब देखो। ससुरी कहती है और दिखाती कुछ नहीं है। दोस्तों आजकल रोज एक नया टीवी चैनल शुरू हो रहा है। इतने सारे चैनल आ गए हैं कि आदमी चैन नहीं ले पा रहा है। ऐसे माहौल में मैंने एक सरदार जी से पूछा, पापा जी आपके टीवी में कितने चैनल हैं?
ओ यार मेरे टीवी में 200 चैनल हैं, 200 चैनल हैं मेरे टीवी में, 200 चैनल।
200 चैनल पर आप देखते कितने हैं?
ओ यार एक भी नहीं देखता हूँ यार मैं।
एक भी नहीं देखते, फिर आप इतने चैनल करते क्या है पापा जी?
ओ यार सिर्फ बदलता रहता हूँ यार।
आजकल बूढ़े लोग एक चैनल से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैंने पड़ोस के दादाजी से पूछा, क्या बात है दादाजी आजकल आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं।
हाँ बेटा असल में बात ऐसा है कि हम लोगों के लिए बेटा एक चैनल आ गया है, एक चैनल आ गया है हम लोगों के लिए।
चाचा आप लोगों के लिए कौन सा चैनल?
बेटा बुढ़ापे में आदमी को सहारा की जरूरत होती है तो सहारा आ गया।
दोस्तों स्टार प्लस वाले पब्लिक को रोकड़ा बांट रहे हैं। अभी जी वालों ने भी रोकड़ा बांटना शुरू कर दिया है। दूसरे चैनल वाले भी दर्शकों को ऊपर काफी पैसा लुटा रहे हैं। अब तो ये लगता है कि जो बेरोजगारी सरकार सालों में नहीं खत्म कर पाई, ये टीवी चैनल वाले उस बेरोजगारी को खत्म करके ही दम लेंगे। हर एक आदमी आजकल टीवी से चिपका रहता है, सोचता है शायद कुछ कमाई हो जाए। ऐसे माहौल में अगर किसी आदमी से पूछो कि आजकल क्या कर रहे हो तो जवाब मिलता है कि आजकल टीवी देख रहा हूं यार। भाई पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है यार। ऐसे में कोई परेशान गरीब फटे हाल आदमी दिख जाए, जब उससे पूछो कि ये क्या हाल बना रखा है, कुछ देखते क्यों नहीं?
अरे कहां से देखें, टीवी ही एक महीने से खराब पड़ा है, अब तो घर में खाने के भी वांदे हो गए हैं।
दो पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं, क्या भाई साहब आजकल तो आप दिखते ही नहीं एकदम।
अरे क्या बताएं शर्मा जी, अगले महीने बेटी की शादी है इसलिए हर चैनल के प्रोग्राम देखने पड़ते हैं। भाई दहेज भी तो जुटाना है।
इधर एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है,
मम्मी मम्मी मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ, मम्मी पॉकेट मनी दो ना, मम्मी मम्मी पॉकेट मनी दो ना मम्मी।
बेटा एक हफ्ते से तुम्हारे डैडी की तबीयत नहीं ठीक है, मैं भी टीवी नहीं देख पा रही हूँ,
आखिरकार पैसे आएंगे कहां से? जा टीवी खोल के जी माला माल देख ले।
इधर एक भिखारी अभी भी भीख मांग रहा है,
दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, कुछ तो दे दे रे बाबा, दे 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 दे।
ए ए भिखारी इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू अभी भी भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? है तेरे घर में टीवी नहीं है क्या? बाबूजी टीवी तो है पर उसमें सिर्फ दूरदर्शन आता है।
करोड़ों के बाद अब अरबों की बात करता हूं, क्योंकि अब हम एक अरब हो गए हैं, यानी कि हमारी आबादी रोज का रोज बढ़ती ही जा रही है। आबादी को कम करने के लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है, पर आबादी है कि बढ़ती ही जा रही है। हमने एक भैया से पूछा कि तुम्हारे गांव की आबादी इतनी क्यों बढ़ रही है, तो भैया बोला,
भैया हमारे गांव का जो इतना आबादी बढ़ रहा है उसके लिए जो है रेलवे विभाग दोषी है। ये रेलवे विभाग के चक्कर में जो है आबादी इतना बढ़ गया है। हम सही कह रहा हूँ, एकदम सही कह रहा हूँ, 100% सही कह रहा हूँ भाई। हाँ,
रेलवे विभाग दोषी है, समझ में नहीं आया।
अरे भैया तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, बात दरअसल ऐसा है कि रात को 2 बजे एक ट्रेन हमारे गांव के किनारे से गुजरती है, धक 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 धक, ऐसा खड़बड़ खड़बड़ करती है कि रात को 2 बजे पूरा गांव का आदमी जाग जाता है। अब आदमी जागेगा तो आबादी तो बढ़ेगा ना।
हमारे लालू जी ने कौन बनेगा करोड़पति में जीतने वालों के नाम एक संदेश दिया है
कि देखिए जो जो करोड़ रुपया जीतेगा वो पैसे का बहुत कायदे से इस्तेमाल करेगा, फिजूल खर्ची नहीं ना करिएगा।
यही संदेश उन्होंने चुनाव आयोग के पास भी भेज दिया और कहा
कि देखिए चुनाव में बहुत पैसा खर्चा होता है, इसलिए ये चुनाव का लफड़वा बिल्कुल खत्म करवा दिया जाए और जिसको जिसको प्रधानमंत्री बनना है उसे दिल्ली के लाल किले मैदान में बुलाइए और लाल किले के मैदान में भैंस बंधवा दीजिए, जो भैंस का सबसे ज्यादा दूध निकाल ले उसे प्रधानमंत्री बना दीजिए।
खैर दोस्तों, चुनाव आयोग ने लालू जी की बात मान ली और दिल्ली के लाल किले मैदान में सबको बुलाया गया और सबसे कहा गया कि पासवान जी बाल्टी उठाइए अंदर जाइए, मुलायम जी बाल्टी उठाइए अंदर जाइए, राव जी बाल्टी उठाइए अंदर जाइए, पवार जी आप भी अपनी बाल्टी लीजिए अंदर जाइए, अटल जी बाल्टी लीजिए अंदर जाइए। सारे लोग बाल्टी ले लेकर के दूध निकालने के लिए अंदर चले गए। खैर सारे लोग अंदर गए, दूध निकालना शुरू किया और घंटी बजते ही सारे लोग अपनी अपनी बाल्टी लेकर बाहर आ गए।
हाँ पासवान जी आपने कितना निकाला है?
जी हमने तो 15 लीटर निकाला।
वेरी गुड वेरी गुड। हाँ मुलायम सिंह जी आपने कितना निकाला?
देखिए जी हम तो निकालते रहते हैं, हमारा ये खानदानी पैसा है वो हमने निकाला है।
नहीं कितना निकाला है?
हमने जो है 25 लीटर निकाला है।
ठीक है साइड में आइए। इधर सोनिया जी आपने कितना निकाला है?
देखिए हमने हमने तो बहुत कम निकाला है, 12 लीटर निकाला है।
कोई बात नहीं इधर आइए साइड में आइए। हाँ राव जी आपने कितना निकाला है?
ओ हमने तो जो है 25 लीटर।
ठीक है साइड में आइए।
देखा कि एक आदमी वहां पर कम है, कौन आदमी नहीं है, तभी देखा दूर से लालू प्रसाद यादव अपनी बाल्टी लेकर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं।
अरे भाई रुकिए रुकिए, अरे भाई रुकिए, ये कहां का अत्याचार हो रहा है? अभी हम आया नहीं हूं और सिलेक्शन पहले ही हो रहा है।
पर लालू जी आपने कितना दूध निकाला? तो देखा लालू जी की बाल्टी में सिर्फ 0.25 लीटर दूध। लालू जी आपने सिर्फ 0.25 लीटर दूध निकाला?
अरे दूध को मारिए गोली, ये बताइए हमारे बाड़े में भैंसा कौन बांधा रहा?
आजकल जिसे देखो वही फोन मिलाने में लगा हुआ है कि कैसे भी अपना नंबर लग जाए, पर फोन है कि लगता ही नहीं। लोग सिर्फ ये कह के रह जाते हैं
कि मेरा नंबर कब आएगा।
बाय द वे फोन लग भी गया तो हेलो
करोड़पति। अबे करोड़पति की छोड़, मैं तेरी बाजू वाली का पति बोल रहा हूं। तू ही रोज फोन करके मेरी पत्नी को छेड़ता है ना।
अगर तू सामने आ गया
तो मैं श्योर कह रहा हूं तेरा कॉन्फिडेंट बिगाड़ दूंगा, तेरा भरोसा उखाड़ दूंगा, समझा? कमीने तेरी तीनों लाइफ लाइन डेट कर दूंगा। हाँ।
बेचारे ने वापस नंबर मिलाया, वापस नंबर मिलाते ही फिर बोला हेलो देखिए देखिए मैं कानपुर से हजारीलाल बोल रहा हूँ, मैं कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेना चाहता हूँ। हाँ उधर से आवाज आई,
अबे नाम है हजारीलाल और भाग लेगा करोड़पति में।
अबे भागना है ना तो फोन रख और भाग ले तेजी से, ये बिस्किट कंपनी का नंबर है।
वापस फोन लगाया, वापस फिर एक फोन लग गया, हेलो करोड़पति, हाँ मैं बोला हूँ मैं आपके यहाँ भाग लेना चाहता हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ।
जवाब देने का तो बोल, ये बता तेरे को कौन सा गाली सुनने का है, माँ का बहन का बीवी का मिक्सर गाली,
सर मैं लाइफलाइन का सहारा लेना चाहता हूँ।
आजकल फिल्मों के भी अजीब अजीब टाइटल आ रहे हैं जो लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। अभी संजय दत्त की एक फिल्म रिलीज हुई थी, चल मेरे भाई। यार ये संजय दत्त भी अजीब आदमी है, इतने दिनों तक टाटा में बंद रहा फिर भी भाई लोगों के साथ चलना नहीं छोड़ा। दीपा मेहता एक फिल्म बना रही थी, वाटर। इस फिल्म को बनाने में बहुत लफड़ा हो गया, दीपा जी बहुत परेशान हो गई कि अब क्या किया जाए। एक दिन दीपा जी के घर में किसी बेवड़े ने फोन किया,
ए दीपा ये तू हेड़ी हो गई है क्या? वाटर 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 चिल्ला रही है, अरे वाटर को छोड़ना, बनाने गए तो क्वार्टर बनाओ, क्वार्टर भी नहीं जमता है तो अद्धी बनाओ, खम्मा बनाओ, और इधर बंबई में ड्राई डे के दिन लगाओ ना, हाउस फुल जाएगा, गारंटी है।
कभी कभी लोग फिल्म देख कर आते हैं तो उन पर घंटों फिल्म का भूत सवार रहता है। ऐसे ही एक लड़का फिल्म दूध का कर्ज देखकर घर में वापस आया, आते ही अपनी माँ से बोला,
माँ मैं अब इस लायक हो गया हूँ माँ कि मैं अब तुम्हारे दूध का कर्ज उतार सकता हूँ। माँ माँ अब मैं तुम्हारे दूध का कर्ज उतार सकता हूँ। माँ बेटा बेटा मेरे दूध का कर्ज तुम बाद में उतारना, पहले तू दूध वाले का कर्ज तो उतार दे बेटा।
मैंने एक मिस्टर से पूछा, भाई साहब अभी ये जो फिल्म आई है जंगल, आपने जंगल देखा है?
जंगल ना बाबा, मेरे को जंगल से बहुत डर लगता है, उधर वीरप्पन रहता है। और फिर जब से मैंने सुना है कि दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, तब से तो मैंने अपनी वाली के साथ गार्डन में भी जाना छोड़ दिया है।
इधर जब से फिल्म कहो ना प्यार है हिट हुई है, तब से हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से यही कह रहा है कि कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। शादी के बाद यही लड़का रात को घर में पीकर घुसेगा और औरत के कान के नीचे बजाकर कहेगा, ये सहोना प्यार है। इधर एक हस्बैंड वाइफ थिएटर में फिल्म देख रहे थे, तभी पत्नी बोली, ए जी देखो ना गोविंदा गोविंदा और उर्मिला से कितना प्यार कर रहा है, देखो ना कैसा कैसा प्यार कर रहा है, कितना अच्छा प्यार कर रहा है, देखो कितना प्यार करता है, कितना कितना प्यार कर रहा है, देखो ना और एक तुम होगी और एक तुम होगी। अरे चुप चुप, बड़बड़ 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 करती है, फोकट में नहीं कर रहा है प्यार, गोविंदा को उर्मिला से प्यार करने का लाखों रुपया मिलता है, समझी? अभी फिल्मों के नाम से कितना कंफ्यूजन हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा माँ से जिद कर रहा है,
मम्मी 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 मुझे जोरू का गुलाम देखना है, दिखाओ ना मम्मी, प्लीज मम्मी थिएटर चलो ना मम्मी, मुझे जोरू का गुलाम देखना है मम्मी, चलो ना।
बेटा थिएटर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पापा आते ही होंगे, ये देख लेना।
हर एक इंसान अपने अपने तरीके से सोचता है, कुछ लोग तो बड़ी ही दूर की सोचते हैं। अभी एक नाई एक नेताजी के बाल काटने के लिए जब भी जाता है तो उनके पास जाके एक ही सवाल करता है, ए नेताजी ये चुनाव कब हो रहा है नेताजी?
चुप, बाल काट जाता बकबक नहीं समझे, चुपचाप बैठ।
थोड़ी देर बाद फिर बोला, ए नेताजी बताओ ना ये चुनाव कब हो रहा है?
क्यों बे, क्या तुझे भी चुनाव लड़ना है? चुनाव का टिकट चाहिए?
अरे सरकार हम क्या करेंगे चुनाव लड़के, ये लड़ना भिड़ना तो आप लोगों का काम है।
चुप, भैया बार बार क्यों पूछता है चुनाव कब है, चुनाव कब है?
अरे सरकार हम तो सिर्फ इसलिए पूछता हूँ कि चुनाव का नाम सुन के आपके बाल खड़े हो जाते हैं, हमको बाल काटने में आसानी हो जाती है।
हर एक शख्स को चेंज की जरूरत होती है, कोई चेंज के लिए स्विट्जरलैंड जाता है, कोई हॉलैंड, कोई पोलैंड, कोई लंदन। अगर हमारे पुराने जमाने के तमाम कैरेक्टर चेंज के मूड से अगर फिर से धरती पे आ जाए और वो भी बॉम्बे में, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, जैसे रावण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, हनुमान वगैरह वगैरह। इधर मैंने देखा ये सारे लोग बॉम्बे में आ गए, भीष्म पितामह लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाकर टेंशन में घूम रहे हैं। तभी किसी ने पूछा, पितामह क्या बात है आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं? तो पितामह बोले,
क्या बताओ पुत्र, क्या बताओ पुत्र, मैं प्रतिज्ञा बद्ध हूं पुत्र, प्रतिज्ञा बद्ध हूं पुत्र, प्रतिज्ञा बद्ध हूं।
महाराज कैसी प्रतिज्ञा?
पुत्र पुत्र बिहार चोपड़ा के प्रतिज्ञा, पुत्र बिहार चोपड़ा के प्रतिज्ञा, महाभारत दूरदर्शन पर कब की खत्म हो चुकी है पुत्र, लेकिन मैं पेमेंट के लिए आज
तभी अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। ही फाँ सु फू हूँ पितामा, ये आवाजें कैसी आ रही है?
पुत्र ये द्रोणाचार्य है, पुत्र द्रोणाचार्य है, जब से बंबई में आया है ना, धनुष विद्या तो कोई सीख ही नहीं रहा है पुत्र, धनुष विद्या तो कोई सीख ही नहीं रहा है, इसलिए इसने यहाँ पर कराटे के क्लास लेना चालू कर दिया है पुत्र, कराटे के क्लास लेना चालू कर दिया।
तभी पितामह के पास दुर्योधन आ गए। दुर्योधन ने आकर के पितामह से कहा,
प्रणाम पितामह, प्रणाम, खुश रहो, आयुष्मान भवो, आयुष्मान भव, पुत्र बताओ कैसे आना हुआ, पुत्र कैसे आना हुआ। पितामह मैं कुछ काम धंधा करना चाहता हूं। पितामह, पुत्र ये बंबई है पुत्र, यहाँ पर काम धंधा करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए पुत्र, अनुभव चाहिए, तुम्हारे पास कोई अनुभव है पुत्र, अनुभव है? हाँ पितामह, मैं महिलाओं के वस्त्र हरण करने में स्पेशलिस्ट हूँ पितामह। नादान बालक, मूर्ख बालक, तू देखता नहीं बंबई में तो कोई महिला वस्त्र पहनती ही नहीं, तो तू हरण क्या करेगा, हरण क्या करेगा।
तभी देखा अचानक धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, उनके साथ में एक सेक्रेटरी रहता था संजय, अचानक संजय संजय चिल्लाते हुए नजर आए।
संजय कहाँ हो तुम, संजय संजय कहाँ हो तुम, संजय संजय।
महाराज ये संजय संजय क्या चिल्ला रहे हो महाराज?
अरे क्या बताऊं पुत्र, मेरा सेक्रेटरी संजय मुझे छोड़कर कहीं चला गया है पुत्र, वो अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा बॉम्बे मुझे देख करके बताया करता था कि चौपाटी में क्या हो रहा है।
पर महाराज ये संजय चला कहाँ गया?
अरे क्या बताऊं पुत्र, म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन ने ज्यादा पगार देकर उसे अपने यहां काम पर लगा
दिया। इधर देखा हनुमान जी बॉम्बे तो आए लेकिन तुरंत ही वापस जाने की तैयारी करने लगे। तभी किसी ने पूछा, हनुमान जी आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं महाराज? तो बोलो,
पुत्र मैं बॉम्बे में नहीं रहूंगा, पुत्र मैं बॉम्बे में कता भी नहीं रहूंगा।
लेकिन हनुमान जी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है?
बोले, पुत्र सबको मालूम है कि मैं उड़ लेता हूं, उड़ करके कहीं भी चला जाता हूं, लेकिन सुबह सुबह 50 आदमी लिफ्ट मांगने वाला मिल जाता है।
हनुमान जी प्लीज दादा तक ड्राप कर दो, हनुमान जी प्लीज बांद्रा तक ड्राप कर दो।
ये तो फिर भी चल जाता है, लेकिन एक म्यान में दो तलवारें कदापि नहीं रह सकती।
हनुमान जी एक म्यान और दो तलवार, मैं मतलब नहीं समझा।
मतलब ये कि बॉम्बे में या तो मैं रहूंगा या तो दारा सिंह।
इधर रावण बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े। किसी ने उनसे पूछा, रावण जी प्रणाम।
प्रणाम।
रावण जी इतने दिनों तक आप दिखाई नहीं पड़े, और महाराज पहले तो आपके 10 मुंह थे, अभी तो सिर्फ एक ही बचा, महाराज 9 मुंह कहां हैं आपके?
मैं लंदन गया था, लंदन में जाकर के मैंने फोल्डिंग सर्जरी करवाई, मैं अब फोल्ड करके 9 मुंह घर पर रखता हूं और एक मुंह लेकर के चलता हूं। क्या है, पहले 10 मुंह लेकर के लोकल ट्रेन में चढ़ने को नहीं होता था, अभी बाकी के 9 मुंह फोल्ड करके घर में रखता हूं, एक मुंह लेकर के चलता हूं, और जब कभी पार्टी या फंक्शन में जाना होता है
तो खोल करके पूरे 10 मुंह फिर से लगा लेता हूं।
जब से क्रिकेट में मैच फिक्सिंग शुरू हुई है तब से दूसरे गेम्स के खिलाड़ी बहुत परेशान हैं। एक हॉकी खिलाड़ी तो बेचारा जोर जोर से रो रहा था। अरे 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 अरे, क्यों रो रहे हो? किसी ने मैच फिक्स करने का इल्जाम लगाया है क्या?
इसीलिए तो रो रहा हूं कि हम लोगों के ऊपर तो कोई मैच फिक्सिंग का ब्लेम भी नहीं लगा है। काश मैं भी क्रिकेटर होता।
अरे यार, क्रिकेट को छोड़ो, हॉकी भी तो बहुत अच्छा गेम होता है ना।
अरे बस भी करो, जिस गेम को आज तक किसी ने फिक्स ना किया हो उसे आप अच्छा गेम कहते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ कि हॉकी में मैच फिक्सिंग नहीं होती है और ना ही तुम लोगों को मॉडलिंग वगैरह करने की ऑफर मिलते हैं, फिर तुम लोगों का खर्चा कैसे चलता है?
भाई खर्चा तो हॉकी से ही चलता है। वो क्या है ना, जो पड़ोस के भाई लोग हैं उनको किधर भी लफड़ा करना होता है, हफ्ता वसूलना होता है, तो मेरी हॉकी भाड़े पे ले जाते हैं।
अच्छा भाई लोग भाड़ा बराबर देते हैं ना?
अभी भाई लोगों के मूड पर है, कभी तो दे देते हैं और कभी कभी ना मेरी हॉकी मुझे ही दिखाने लगते हैं। कहते हैं शाने तू इस हॉकी से गोल डालता है, अपुन इस हॉकी से खोपड़ी खोल डालता है।
जब से मैच फिक्सिंग का मामला सामने आया है लोगों का क्रिकेट से दिल भर गया है। हाँ, क्रिकेटरों का घर जरूर पैसों से भर गया है, क्योंकि खिलाड़ियों को सिर्फ पैसों से ही मतलब है। पैसा ही उनका ईमान बन गया है, पैसा ही उनका वतन हो गया है। आजकल तो क्रिकेटर देशभक्ति गीत भी कुछ यूं गाते नजर आते हैं।
कह चले अलविदा गेम को साथियों, अब तुम्हारे हवाले बैट बॉल साथियों। बॉलिंग हमने करी, बैटिंग हमने करी, मैच जिताने का हमने न ठेका लिया। मैच होते गए, पैसे लेते गए, सरबुकी का कभी भी न झुकने दिया। माल हमने बनाया, तुम बनाओ साथियों, अब तुम्हारे हवाले बैट बॉल साथियों, अब तुम्हारे हवाले बैट बॉल साथियों, अब तुम्हारे हवाले बैट बॉल साथियों।